शांति। और मीठी प्यारी शीलू दीदी जी का हाथ हिला के सभी वेलकम करेंगे। दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने को भी थोड़ा चार्ज कर ले, अलर्ट हो जाए। आदरणीय शीलू दीदी जी हमारे सन्मुख है। मम्मा बाबा की अलौकिक पालना में पलने वाले, छोटी आयु से ही ब्रह्मा बाप में अपने लौकिक अलौकिक पारलौकिक पिता को अनुभव कर प्यार और पालना लेने वाले दीदी जी, लगभग 50 वर्षों का समर्पित जीवन और आपके व्यक्तित्व की एक बहुत अद्भुत विशेषता है। जैसे देवताओं की महिमा में गाते हैं कि एक एक कर्म इंद्रिय मधुरता की मूर्ति है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। तो दीदी जी में बाबा ने ऐसा अलौकिक जादू भरा है जो आपके व्यक्तित्व की मधुरता मिठास हरेक के दिल को छूती है। और जब दीदी जी को देखते हैं तो यह अनुभव होता है, हमारी दादियां हैं यज्ञ की स्थापना के आदि रतन। और जिन महारथी दीदियों से और भाइयों से हम क्लासेस का लाभ ले रहे हैं, ये सभी है यज्ञ की सेवा की आदि के रतन। जब 1950 में बाबा माउंट आबू पे आए और बहुत धीरे धीरे यज्ञ सेवा का कार्य शुरू हुआ, तो बिल्कुल आदि में जिन आत्माओं ने बाप को पहचाना और बाप पर बलिहार हुए, ऐसे रत्नों की ये माला है जिनके अनुभवी विचारों का लाभ हम ले रहे हैं। दीदी जी ने राजयोग को इतना सरल किया है। जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो सबसे पहले दीदी जी के ही वो स्वर है जो याद आते हैं, मैं एक आत्मा हूं। अभी यज्ञ में नॉलेज जैसे धीरे धीरे रिफाइन हुई है, तो राजयोग शिविरों के माध्यम से राजयोग को हर मनुष्य के लिए सहज करना जिसका वो अभ्यास कर सके, तो ये विशेषता कहे, ये सौभाग्य कहे दीदी जी के खाते में जाता है। जो आज भी वो कमेंट्री उतनी ही प्यार से, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, हरेक की मन भावन है और बाबा से लगन लगाने में तार जोड़ने में सहयोग करती है। तो राजयोग आपका विशेष प्रिय विषय है और योग सिखाने की विशेष कला दीदी जी में है। कभी कभी ऐसा मैं देखती हूँ कि सतयुग में भी शायद दीदी जी श्री कृष्ण को पढ़ाई कराएंगे। तो गुरुपद है आपका, क्योंकि लाखों ऐसी आत्माएं जो बाबा के घर नई नई मधुबन में आती है और राजयोग शिविरों के माध्यम से बाबा का परिचय लेती है। अभी भी शुरू से लेकर जब से शिविर शुरू हुए हैं, दीदी जी का ये विशेष मधुबन में सेवा का पार्ट है। सारा ही राजयोग शिविरों का प्रबंधन दीदी जी देखते हैं। पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहां दीदी जी के चरण न पड़े हो। तो पूरे विश्व के ग्लोब में कोने कोने में आपने अनेक आत्माओं की ज्योत जगाई है, क्योंकि ये भी आपकी विशेषता रही कि जिस समय आप बाबा के पास आए तो लौकिक हिसाब से भी साइंस की पढ़ाई करके आए, तो अंग्रेजी भाषा, क्योंकि दीदी जी मुंबई से है तो शुरू से दीदी जी की बहुत अच्छी थी। जब डबल विदेशियों की सेवा शुरू हुई तो तब से लेके आज तक विदेशियों को ट्रांसलेशन शीलू दीदी की ही सबसे अच्छी लगती है। तो अंग्रेजी भाषा में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का भी दीदी जी का बहुत विशेष पार्ट रहा है। तो बाबा की एक विशेष कन्या सरस्वती माता के साक्षात अवतार स्वरूप आदरणीय दीदी जी हमारे सन्मुख है, और एक बहुत सुंदर विषय जो इनके व्यक्तित्व से झलकता है वो है बेफिकर बादशाह। हमारा बाबा अनेक परिस्थितियों में भी सदा निश्चिंत और बेफिकर रहा, और बाबा ने अपने हर बच्चे को भी ये वरदान दिया है। तो दीदी जी के अनुभवी बोलों से हम आज ये सुनेंगे कि बेफिकर बादशाह स्थिति किसे कहते हैं और उसको कैसे हम जीवन में पक्का करें। आदरणीय शीलू दीदी जी।
ओम शांति। हमारी ममता बहन ने तो बहुत कुछ कह दिया। बाबा ने हम बच्चों को कितनी ऊंची नजर से देखा है। भगवान का हर महावाक्य उसी से झलकता है कि बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं और बाबा हमको किस नजर से देखते हैं, वो अंतर भी महसूस कर सकते हैं। एक एक वरदान, एक एक टाइटल जो बाबा हम बच्चों को देते हैं, यही बाबा क्या नजरिया है हम बच्चों के लिए। हर मुरली में हमें अलग अलग टाइटल मिलते हैं, अलग अलग ऊंचे वरदान मिलते हैं। तो सचमुच सबसे पहले अगर उनका ही मनन चिंतन हो तो हम बेफिक्र बादशाह बहुत सहज बन सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी आप को नहीं समझता, अपनी विशेषताओं को नहीं जानता तो कई फिक्रों में फंस जाता है। परंतु वो अगर स्वमान से भरपूर है और कोई भी उसके सामने बात आई उसको एक चुनौती समझता है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ मेरे अंदर यह सामर्थ्य है, मैं इस परिस्थिति का सामना सहज कर लूंगा, तो चिंता नहीं होती इसको। और उस सामर्थ्य के साथ उस परिस्थिति का सामना करता है। तो बाबा ने भी जो हम बच्चों को इतने टाइटल दिए हैं, इतने वरदान दिए हैं, अगर रोज एक एक का भी स्मरण हो, चिंतन हो, तो भी हम बेफिक्र बादशाह बहुत सहज बन सकेंगे। कोई फिक्र आया तुरंत याद करो, मैं कौन की परिभाषा इतनी गहरी है, जो आज तक बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी नहीं समझा और पूछते ही रहे मैं कौन हूँ। और बाबा ने मैं कौन हूँ का इतना सुंदर विवरण हमें दिया, रोज दे रहे हैं, तुम बच्चे कौन हो। शुरू से लेकर के शायद अंत तक भी यही पाठ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। शुरू में भी जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा बाबा को भी कोई उस प्रकार से तो आत्मा का ज्ञान नहीं था, शास्त्रों अनुसार जो सुना था बस उतना ही कि आत्मा तो मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, घटती नहीं, परंतु मैं एक आत्मा हूँ ये तो पता कहाँ है, किसको भी नहीं मालूम है। हाँ, मेरे अंदर आत्मा ये कह देंगे, मैं ही हूँ, और ये उल्टा ज्ञान मिल गया कि आत्मा तो निर्लेप है, उस पर तो कभी लेपक्षेप लगता ही नहीं है, कभी पतित बनती ही नहीं है, इसीलिए खाओ पियो मौज करो। ये मन ही है, पापी है, इस मन को ही मारना है बस। तो बाबा यही पहले पुरुषार्थ करते थे लौकिक में, बस ये मन ही पापी है, मन ही चंचल है, इस मन को ही मारना है। तो बैठेंगे ध्यान में, विष्णु के ध्यान में, और मन चंचल होगा तो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जब मन भटकता था तो अपने को चमक मारता था, हे मन तुम कहाँ जा रहे हो, या कभी कभी अपने को चुटी लगाता ना, वो क्या बोलते हैं चिमटी, हाँ करते ना, अपने ध्यान केंद्रित करने लिए या ध्यान अपने ऊपर खींचवाने के लिए कि मन तुम कहाँ जा रहे हो। बाबा ने एक डायरी में भी लिखा था, मन मंत्री है, तो कैसे वो वश है विकारों के, बेलगाम घोड़ा है। तो बहुत कोशिश करता था बाबा लौकिक में, जब तक आत्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं था, या आत्मा तो शब्द ही नहीं कहता था, बस मन मन। और बाबा ने आकर के जब आत्मा की परिभाषा दी तो मन तो आत्मा की चेतनता है, और मन सदा पापी नहीं है, मन तो बहुत ऊंची ऊंची सोच भी करता है, इसलिए मन को मारना नहीं है, पर क्या करना है मन को, हाँ श्रेष्ठ बनाना है, दमन नहीं करना है पर अमन करना है, ऐसे सुनाते हैं। तो बाबा कैसे इस आत्मा के ज्ञान को अपने अंदर कूट कूट के डालने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते थे। अपनी युगल थी बाबा की, तो उनको देखने के लिए भी बाबा अंदर में सोचते थे, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, दृष्टि को शुद्ध करने लिए। अगर अब उन तक कैसे पहुंचे बाबा का पुरुषार्थ, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे, बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, तो बाबा लिखते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, तो दीवारों पर लिखते तो यशोदा भी पढ़ती होगी ना, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। तो बाबा की दृष्टि तो यशोदा के प्रति आत्मा की, पर यशोदा की दृष्टि बाबा के प्रति आत्मा की है वो तो इतना नहीं मालूम था, तो इसीलिए वो भी पढ़े और खुद पर भी ध्यान जाए कि यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। फिर बाबा की अपनी अपने बाबा के और ना अपने बहू में बहुत मोह था, ब्रिजिंद्रा दादी बहुत मोह था, सुंदर भी थी और बहुत विशेषताएं थी उनमें, बहुत मोह था। तो बाबा ने उसको भी और उनका भी बाबा में बहुत मोह था, बेटी से भी ज्यादा बाबा प्यार करते, और वो भी अपने पिता से ज्यादा बाबा से बाबा को इतना प्यार करते थे, भले वो ससुर थे लौकिक में। तो उनको भी आत्मा की दृष्टि से देखना है, तो बाबा लिखते थे राधिका, बाबा की बहू का नाम था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, इतना अपने अंदर ये पक्का किया। तो देही अभिमानी स्थिति बनानी है, ये बाबा ने अपने अंदर प्रतिज्ञा की, संकल्प किया। तो देखो हर मुरली में किस न किस रूप से बाबा देही अभिमानी बनने की बातें सुनाते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, सबसे ज्यादा मोह किससे है, हाँ शरीर से, इसीलिए सबसे ज्यादा डर अगर इंसान को है तो वो है मृत्यु का डर, मैं मरता हूँ क्योंकि शरीर से बहुत मोह है, तो मैं मरता हूँ क्योंकि मैं शरीर ही समझ रहा हूँ खुद को, तो मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ, तो मृत्यु का डर। तो कैसे ये मृत्यु का डर खत्म हुआ, जब हमें आत्मा का सही ज्ञान मिला। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर बेफिक्र बादशाह है तो क्या कर, बेफिक्र बादशाह बनना है तो सबसे पहले क्या करो, देही अभिमानी बनो, देह से न्यारे बन जाओ, एक सेकंड में देह से न्यारे बन सको, कुछ भी हो जाए एक सेकंड में, मैं आत्मा शरीर हूँ। देखो एक पंछी होता है, पंछी दाना चुगने के लिए धरती पर घूमता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि कुछ है, हाँ, कुछ बात है, आवाज है, कुछ हुआ, कोई आया, तो क्या कर लेता है, उड़ जाता है। एक सेकेंड में उड़ जाता है, क्योंकि उसको पंख तो है ना, तो डरेगा नहीं, पर क्या करेगा, अब डर के मारे उड़ता है, या अपनी स्वतंत्रता चाहता है इसलिए उड़ता है, या उसका एक अपना स्वभाव है उड़ना, कुछ भी कहो, पर एक सेकेंड में वो उड़ जाएगा, डरेगा थोड़ी, घबराएगा, या ऐसे ऐसे से क्या करेगा, उड़ जाएगा। तो बाबा कहते आत्मा भी क्या है, आत्म पंछी कहते हैं ना, आत्मा भी एक पंछी है। तो पंछी माना हमारे पंख कौन से हैं, मन और बुद्धि, ये पंख है, या ज्ञान और योग बाबा कहते हैं ये पंख है। तो ये ज्ञान और योग रूपी पंख या मन और बुद्धि रूपी पंख हमको एक सेकंड में देह भान से उड़ाए, तब हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। क्योंकि अगर देह अभिमान में फंसे हुए हैं तब कहेंगे पता नहीं क्या करूं, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कई लोग चिंताओं में ग्रसित रहते हैं ना, तो घूमते ही रहते दिखाते हैं कई लोग। कई बार एक व्यक्ति को चिंता है, बस उसको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो क्या करेगा, वही गोल गोल घूमता ही रहेगा। भाई तुम बैठ कर शांत होकर के न्यारे हो जाओ, वो आएगा नहीं, क्या करेगा, घूमता रहेगा। कोई उसके सामने आएगा, मत बात करो, सोच में है, चिंता में है। लेकिन बाबा ने ये आत्मा का ज्ञान देख करके, हाँ, हंस रही है बहने, क्यों ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं। तो आत्मा का ज्ञान देख करके बाबा ने सबसे पहले इस भय से मुक्त कर दिया है। हम तो कई बार देखते हैं जिस किसके रिश्तेदार जैसे हॉस्पिटल में हैं और काफी सीरियस है पेशेंट, अभी ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके गए हैं, अब डॉक्टरों ने कुछ कहा नहीं है, लाल लाइट बाहर है, तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे क्या करते हैं, सबको अनुभव है, बस घूम रहे, बार बार देख रहे। कोई नो न्यूज, पता नहीं क्या हो रहा होगा। और अधिकतर यही होता है कि नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते कि ठीक हो जाएगा, ठीक ही होगा, पर क्या सोचते हैं, नेगेटिव, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं शरीर छूट न जाए। तो आज भी बाबा ने कहा ना, इतने डॉक्टरों को कहेंगे, डॉक्टर साहब बच जाएगा ना, हाँ बच जाएगा ना। परंतु आत्मा के ज्ञान से कैसे हम बच्चों को सबसे पहले ये मृत्यु का भय, जो चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है, यही इनसे मुक्त कर दिया आत्मा के ज्ञान से। मैं तो कभी मरता नहीं हूं, कोई भी है कभी नहीं मरता, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। तो क्या हर वक्त ये भान रहता है मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं? तो अगर ये भान हर वक्त रहे तो देखो बेफिक्र बादशाह बहुत सहज बन जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जाओ ट्रेन के पटरियों पर खड़े हो जाओ और हे ट्रेन आओ मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा पागलपन नहीं करना है। ऐसा करना है क्या पागलपन? बाबा तो कई बार कहते हैं कि कोई सोचता बस मैं मर जाऊं, कहीं तो उसका बिल्कुल अपोजिट है, बस मुझे मरना है। हाँ मरना ही सोचते हैं, बाबा कहते नहीं, भले ये शरीर कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी चतियां लगानी पड़े, लेकिन लगा करके चतियां चलो, क्योंकि आत्मा जितना इस शरीर में होगी ना उतना बाबा को याद कर सकेगी, शरीर छूट गया, फिर नया जन्म लो, कितने साल चले जाएंगे जब तक थोड़ी कुछ समझ आए, तब तक हाँ इतने साल तो व्यर्थ चले जाएंगे। कई बार अभी दादी जानकी जी की तबीयत इतनी खराब थी, इतना दर्द दादी को बताती थी दादी कि सारे जीवन में इतना दर्द पहले कभी नहीं हुआ, है ना, हर प्रकार से यहाँ भी दर्द और पीठ का भी दोनों तरफ जो फ्रैक्चर हुआ। चलो वो तो हुआ, उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे, चलो पट्टा भी बांधा, उसका भी दर्द, यहाँ भी किया उसका भी दर्द, फिर जो चलो पेन किलर देते थे वो पेन किलर से वो हर्निया का दर्द पैदा हो गया, अब उसका और दर्द। आप सोचो कि सब तरफ से जैसे दर्द ही दर्द, पूरा शरीर, पेन किलर भी काम नहीं कर रहे थे, पर दादी कभी दादी ने अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया कि इतना पेन है, इतना दर्द है। दादी से पूछा, दादी बहुत दर्द है, अशरीरी हो जाती थी। पर ये कभी नहीं मुख से निकला, बस बाबा उसे तो उठा लो, कभी कभी किसको होता है ना बस मर जाए, बस बाबा को जो करना होगा, ये शरीर मैंने बाबा को दिया है, बाबा को जैसे चलाना है, ये मेरा तो है ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, बाबा को जैसे चलाना है तो बस न्यारी प्यारी हो सकती थी। परंतु हिसाब किताब बहुत कड़ा था। अब दादी ज्यादा वर्णन नहीं करती थी, परंतु धर्मराज का भी जो हिसाब किताब होगा ना, उनसे भी कुछ कड़ा होगा, क्योंकि कई बार हम देखते थे नींद ही फिर जाती थी, परंतु हम भी क्या कर सकते हैं ना, क्या होगा कोई हिसाब किताब। कई लोग कहते हैं ना कि भाई इतनी दादियों की तपस्या, इतना सब कुछ, तो बाबा उनका सहज क्यों नहीं कर सकते, कर लेते फिर बाबा कैसे करेंगे, और यहाँ ही सब पूरा करना है, धर्मराजपुरी में तो जाना ही नहीं है, वहां तो वो जूरी बनेंगे, ट्रिब्यूनल में चाहिए ना, जस्टिस चाहिए, जज लोग चाहिए, तो उनमें से बनेंगे ना, तो धर्मराज की सजा खुद कैसे खाएंगे, वो तो जज बनेंगे, तो इसीलिए यहाँ हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। अब भले उम्र कितनी हो गई है, यानी एकदम पक गया फल, अभी आत्मा को उड़ना चाहिए, लेकिन बाबा अभी तक उसको रखे रखा है, 98 ईयर्स हो रहे हैं दादी को, परंतु दिमाग इतना क्लियर। कल भी मैं दादी से मिलने के लिए गई थी, नीचे शांतिवन में आ गए हैं तो मिलने के लिए गई थी, इतनी ऊंची इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। दादी ने पूछा क्या यहाँ शांतिवन में क्या करनी, यानी क्या सेवा थी, तो मैंने कहा दादी कन्याओं का क्लास कराया, फिर बच्चों का क्लास कराया, फिर कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम था। दादी सुनती रही, बहुत अच्छा, आगे के प्रोग्राम बताए, तो बस यानी सुनना, ये नहीं कि अपनी बातें करना, पर और जैसे सुनना और आश्वासन देना, टोली देना, ब्लेसिंग देना, ये लाओ ये दो, मना सारा दिन दाता बन के देना, बस यही उनकी बुद्धि में, तो ऐसी है, महान आत्माएं हैं। पर ये कभी नहीं बस बाबा उठा लो, ऐसे कभी नहीं है, बाबा को जो कराना होगा, तो चिंता की बात है क्या। और हम लोग थोड़ा सा हुआ, हाय पता नहीं क्या होगा, क्या पता नहीं, सब पता है ऐसे है कि पता है ना, भविष्य भी पता है ना कि नहीं पता है। हर मुरली में बाबा भविष्य का बताते हैं, हर मुरली में तो पता है, इसीलिए कह नहीं सकते कि पता नहीं क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, है ना। तो इसीलिए एक हंसी की बात है, ब्रह्मा बाबा के समय की बात है, तो ब्रह्मा बाबा पानी बाबा आए, तो बाबा ने सबसे प्रश्न किया कि अपने आप को ना जो समझ, यानी बाबा ने तो सबको जैसे त्रिकालदर्शी बना दिया है, तीनों कालों को जानते हैं, तो जो समझते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ हाथ उठाओ, तो सब ने हाथ उठाया, सब हर एक सोचेगा त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों कालों का हमको ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो फिर बाबा ने कहा, तो किसी को खड़ा किया, अच्छा बताओ त्रिकालदर्शी हो तो कल क्या होगा आपको पता है, कहते नहीं, कल क्या होगा कहते पता नहीं, तो त्रिकालदर्शी कैसे हो? कल क्या होगा ये पता ही नहीं है तो त्रिकालदर्शी कैसे हुए? त्रिकालदर्शी माना भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानते हैं, तो कल क्या होगा ये पता ही नहीं है तो कहेंगे त्रिकालदर्शी? बेचारा चुप हो गया, क्या कहेगा? फिर दूसरे से पूछा तो दूसरे ने ठीक जवाब दिया। उसने कहा बाबा जो होगा ना अच्छा ही होगा। बाबा ने कहा ठीक, हाँ ये जवाब ठीक, हाँ पता नहीं क्या होगा ये किसका जवाब होता है? जो जो चिंता से ग्रसित है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, माना चिंता से ग्रसित है ना। और दूसरे ने कहा बाबा जो भी होगा कल्याणकारी होगा। तो बाबा ने क्या कहा, ये बच्चा एक बिल्कुल ठीक जवाब दिया, ये सच्चा ज्ञानी तो आत्मा बच्चा है। ये त्रिकालदर्शी स्थिति है, ये नहीं कि कल क्या होगा, खाना क्या मिलेगा कल, अभी से मैं बता दूं, अभी जो खाना बनाने वाले कोई पता नहीं क्या मिलेगा, क्या खाना बनाना है, ये थोड़ी है इसकी, ये कोई त्रिकालदर्शी स्थिति की बात नहीं है। लेकिन भविष्य माना जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, इतना निश्चय पक्का है हमें। तो खुद में भी फिर ड्रामा तो है ही है, ड्रामा ने इतना निश्चिंत बना दिया है जो हम सहज रूप से बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, क्योंकि हर बात कल्याणकारी है, हर बात। और दूसरा जो भी बात है कोई भी नई बात नहीं है, ये दो बातें ड्रामा की हमको इतना बेफिक्र बादशाह बना देती है, जो होगा अच्छा ही होगा, और जो होगा वो नई बात तो नहीं है, पहले भी हुई है। डर इसलिए लगता है क्योंकि नई बात है, कोई नया स्थान है, कोई नई नया काम करते, पता नहीं कैसे करूंगा, पता नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। और अगर ये मालूम कि बहुत बार किया है पहले तो डर लगेगा, चिंता होगी, नहीं नहीं बड़ा सहज काम है, मैं तो बहुत बार किया है। तो बेफिक्र बादशाह माना पहले तो अपने आत्मा के स्वमान में स्थित रहने वाला। राजा कितना स्वमान में होता है उसको परवाह नहीं होती है, भले कहेंगे धन का नशा है या अपने पोजीशन का नशा है, परंतु यहां पर उल्टा नशा नहीं है, ये आत्मा का स्वमान है। कई लोग कहते हैं कि कैसे पता चले स्वमान और अभिमान, दोनों में बड़ा सूक्ष्म डिमार्केशन लाइन है। कई अभिमान को भी हम स्वमान समझ लेते हैं और कई स्वमान में रहने में डरते हैं, कहीं अभिमान तो नहीं है। तो क्या अंतर है, छोटी सी पतली लकीर है स्वमान और अभिमान के बीच में। स्वमान जो होता है वो आत्मा का मान है। अब मान लीजिए किसने मुझे गाली दी, कुछ बुरा भला कहा, अब मैं अपनी शांति को क्यों गवाऊं? ठीक है उसका विचार ऐसा होगा, पर मैं आत्मा जानती हूं ना कि बाबा मुझे किस नजर से देखते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं, मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा, छोटा सा ही बस ये स्वमान लो और बड़ा स्वमान न भी लो, उससे भी हमारा मन अशांत नहीं होगा। उसने मुझे कुछ कह दिया, चलो कोई बात नहीं, क्या हुआ उस, वो जाने, वो ऐसे देखता होगा, पर मैं तो अपने आप को जानती हूं, इसलिए मैं कोई रिएक्ट नहीं करूंगी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वमान में है। पर अगर अभिमान होगा तो तुरंत बाबा कहते जिसको अभिमान होगा उसको अपमान भी बहुत जल्दी महसूस होगा, अभिमान वाला अपमान जल्दी महसूस करेगा। तो अगर अपमान महसूस हुआ लोग क्या कहेंगे, ऐसे मेरे लिए क्यों सोच रहा है, इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, इसको ऐसे मेरे लिए नहीं कहना चाहिए था, अब ये टाइम वेस्ट, वो तो कह दिया, सोच लिया तभी तो कह दिया, तो हो गया। अब लोग कुछ भी सोचे, पर मैं तो जो हूं वो तो हूं ही ना, इनके सोचने से उनके कहने से हो गया क्या? ये है स्वमान। पर रिएक्ट किया कि तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, कई बार हंसी में हम कहते हैं, किसी ने अगर मुझे कह दिया तुम मूर्ख हो, और मैं कहूँ अच्छा तो मुझे माँ, तुम मुझे मूर्ख कहते हो तो तुम महामूर्ख हो, नेले पे देला, तुम शेर हो तो मैं कम हूं क्या, मैं सवा शेर हूं, तो महामूर्ख हो, मैं तो केवल मूर्ख हूं। माना इसका मतलब पहला तो ये हुआ कि स्वीकार तो किया ना मैं हूं मूर्ख, स्वीकार किया ना भाई तुम मुझे मूर्ख कहते हो, अच्छा तो तुम महामूर्ख हो, तो अच्छा माना मूर्ख तो हूं। तो अगर मैं नहीं हूं मूर्ख तो महामूर्ख कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा समान है कि बाबा ने तो हमें कितना ऊंचा ज्ञान देकर कितना ज्ञानी तो आत्मा बनाया है, मेरा तो कितना ऊंचा समान है, तो महामूर्ख कहने की जरूरत ही नहीं है। भले चलो उस समय दूसरे लोग कहेंगे ये तो सचमुच मूर्ख है, पर अगर मैंने महामूर्ख कहा तो क्या तो मुझे लोग होशियार समझेंगे, होशियार समझेंगे क्या? देखा, अरे क्या जरूरत थी जवाब देने की, वो तो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, पर मैंने नहीं समझा और मैंने उसको माँ मूर्ख कह दिया। अब कोई पागल आदमी रास्ते में जा रहा और गाली और हम जा रहे हैं गालियां दे रहा हमको, तो हम भी देंगे क्या उसको, क्या करेंगे, देंगे क्या? कई बार ना रास्ते पर शराब पी करके ए कहाँ जाते क्या ये ऐसे बोलने लगते, बहुत मिलते रास्ते पर मिलते हैं आने आने, तो पता है कुछ ना कुछ पता है भाई बेचारा ये पिया हुआ है, और उसको ही नहीं खुद नहीं मालूम वो क्या बोल रहा है, नशे में जो होगा पिया हुआ होगा उसको पता चलता है क्या क्या बोल रहा है नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते आप अपने स्वमान में रहो, इसको कहते बेफिक्र बादशाह। वो कहावत है ना, कुत्ते भौंकते रहे और हाथी चला अपनी चाल, वो कुत्ते छोटे 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 इतना बड़ा हाथी को भौं 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 करेंगे, सोचेंगे ये डर जाएगा, अब उसको क्या परवाह है हाथी को, वो डरेगा क्या? वो भौं 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 करते रहेंगे, हाथी तो अपनी चाल चल रहा है। कई बार होता है ना गाड़ी में हम कहीं जाते हैं तो वो कुत्ते होते हैं वहां, बहुत कुत्ते, तो जैसे गाड़ी को देखी वो 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 करते, अब गाड़ी तो जा रही, वो कुत्ता दौड़ता 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 गाड़ी के, अभी गाड़ी को वो कम्पीट कर सकता है क्या? लेकिन तो हमने एक बार अपने ड्राइवर से पूछा भाई क्या कारण ये कुत्ते क्यों भौंकते गाड़ी को देख करके, तो वो क्या, तो उसने पता है वो कैसे उसने ये समझ लिया, कहता है वो कुत्ते समझ ये मेरी एरिया है, ये हमारी एरिया है, हम इसके राजा हैं, है? ये हम इसके राजा हैं, ये गाड़ी हमारे रास्ते में क्यों आई है। पता नहीं ये सचमुच इसलिए भौंकते होंगे गाड़ी के पीछे, उसको पता तो है कि हम गाड़ी को तो नहीं रेस कर सकते ना, लेकिन वो अपने को राजा समझते, ठीक है तुम रहो राजा, हम तो अपनी चाल चल रहे हैं। तो कहने का भाव है कि जब हमें आत्मा का ज्ञान मिला, ड्रामा का ज्ञान मिला, मैं अविनाशी हूं और सबसे बड़ा डर मृत्यु का है उसको भी मैंने पार कर लिया, और ये जीवन अमूल्य है, हीरे तुल्य जीवन है, इस जीवन की रक्षा भी करनी है, संभालना भी है, स्वास्थ्य भी ठीक रखना है ताकि सेवा कर सके, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोह है परंतु ठीक सेवा कर सके, इसीलिए हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, नहीं तो बीमार हो जाएंगे तो पड़े रहेंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम नहीं शरीर का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि इसमें मोह है, पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इससे हमको सेवा करनी है। फिर जैसे आज बाबा ने कहा, हाँ बहुत अच्छी कई बातें निकली, कि घर में भी रहते तो भी अगर ट्रस्टी होकर के रहते हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, ट्रस्टी है हम, क्योंकि जहां मैं और मेरापन है वहीं चिंता होती है, मैं और मेरापन नहीं है तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। वैसे भी दुनिया में भी हम देखते हैं अगर किसी और का है तो हमको थोड़ी चिंता होती, होती है क्या? अब ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, एक व्यक्ति के घर मेरी बैग कहाँ गई, मेरी बैग कहाँ गई, बैग कहाँ गई पता नहीं, दूसरे की हमको क्या पता कहाँ गई, वो ढूंढता रहेगा कहाँ गई कहाँ गई, चिंता हो जाएगी। तो पहले हम अपनी बैग देखते हैं, मेरी तो ठीक है ना। मेरी तो ना अपनी बैग पहले हम देखेंगे ना, उसकी तो वो ढूंढेगा क्योंकि वो मेरी थोड़ी है। पर मेरी बैग तो ठीक है ना, वो तो किसी ने उठाई, वो तो उसको पता नहीं किसने उठाई, वो जाने हमने थोड़ी उठाई है। तो मेरी ठीक हो ना, उससे दूसरे की हमको चिंता नहीं। तो मेरापन जहां भी आएगा वहां तो मोह जाएगा, और जहां मोह गया तो डर भी रहेगा, जिसमें मोह होता है तो डर भी होता है, कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये गुम ना हो जाए, कोई उठा ना ले, कोई ये ना हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अल्लड़ बन जाएं, अलबेला बन जाएं, या वहां छोड़ते जाएं, वे चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी नहीं। क्योंकि काम की चीज, अभी मोबाइल आपने छोड़ दिया, इधर उधर गुम हो गया, फिर ढूंढते रहो, फिर कितना काम होता है उस मोबाइल से, तो कहां से फिर मिलेगा, फिर चिंता तो होगी। परंतु हाँ, ध्यान भी दो, कोई चीज गुम भी ना हो। पर ऐसा भी नहीं जो इतना वो हो और दूसरों से कम्पीट करते, देखो इसका मेरे से अच्छा है, मैं इनसे और अच्छा लूं, ये नहीं। काम लेना है ना, बस काम लेना है हमको, इनसे अच्छा करके ज्यादा सब कुछ तो चाहिए नहीं। मोबाइल का क्या करेंगे, बस खाली बस फोन कर सके, इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए उनसे सेवा भी लेनी है, काम भी कराना है, पर मेरा नहीं है, मोह भी नहीं रखना है, और उसको उसके प्रति अवहेलना भी नहीं करनी है। अब ये सुंदर बैलेंस अगर हम जीवन में रखते हैं तो फिर हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। और उनसे भी ऊंची बात कि मेरा साथी कौन है। कोई भी देहधारी मेरा साथी नहीं है, इस संसार का कोई भी व्यक्ति किसी का साथी नहीं बन सकता, सदा काल का तो बन ही नहीं सकता है। आज जिनको मैंने अपना आधार बनाया है कि उसके बिना मेरा नहीं चलेगा, वो आधार कल छूट सकता है। तो सच्चा आधार कौन सा है, सच्चा आधार कौन सा है, केवल एक बाबा। तो अगर हम बाबा को ही अपना आधार आदि से ही मानते हैं तो फिर तो डर की बात ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी देहधारी या वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कुछ भी बात को हम आधार बनाएंगे, वो आधार जैसे ही हिलेगा हम भी हिलना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आधार तो स्थायी नहीं है। ये जो कुछ है ये सब कर्मों के अनुसार हिसाब किताब है, और जब हिसाब किताब पूरे होते हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई भी नहीं, किसी को पकड़ के रख ही नहीं सकते हैं। तो जबकि कोई भी व्यक्ति आधार बनाया वो हिलेगा तो हम भी हिलेंगे, तो चिंता जरूर होगी। इसीलिए कहते जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भगवान जिसका साथी है उसको फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। इतनी ऊंची ऊंची कहावतें किस लिए बनी है कि भगवान को अपना साथी बनाओ। भगवान आपको कभी धोखा नहीं देगा। पर मान लीजिए अगर शरीर भी छूट गया, भगवान ने हमको साथ नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है उनको मेरे लिए कोई और प्लान्स हो, कोई और प्लान्स हो। समझो कोई ने शरीर छोड़ दिया, वो सेवा करता था, और सचमुच कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, कैसी बीमारी आ गई, शरीर छोड़ दिया, तो कोई कहेंगे बाबा ने इसको मदद नहीं की, बाबा ने इसको बचाया नहीं। ये भी वास्तव में बेसमझी है। बाबा को इनसे ऊंचा उनको सेवा का चांस देना है। आप समझ सकते हैं, हम तो अल्प बुद्धि वाले ये बात नहीं समझेंगे, पर ये देखेंगे अरे इतना सर्विसेबल और बाबा ने, और ये बाबा ने बचाया नहीं। लेकिन इनसे ऊंची सेवा जो इस शरीर में वो नहीं कर सकता है, पर आगे चल के कर सकेगा कोई और शरीर में, तो फिर तो बाबा ने बचाया नहीं, उसमें कल्याण था ना। क्या कल्याण था, बाबा ने क्यों नहीं बचाया। तो हर बात का एक पॉजिटिव रूप जरूर है, लेकिन नेगेटिव देखने का जो हमारा अभ्यास पड़ गया है, इसलिए हम चिंता में रहते हैं या प्रश्न करते हैं। या तो प्रश्न करेंगे, या तो आश्चर्य खाएंगे, या तो डरेंगे, या तो दुख करेंगे, हा? या तो चिंता करेंगे। ये पांचों ही जो चीजें हैं, प्रश्न करना, आश्चर्य खाना, डरना, चिंता करना और पांचवा क्या बताया, और दुख करना, ये सब बाबा कहते हैं निश्चय की कमी है। खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, इसकी थोड़ी सी भी कमी है तो ये पांच बातें आएगी। प्रश्न करेंगे, आश्चर्य खाएंगे, आश्चर्य भी खाते हैं ना, अरे ऐसा हो गया, हाय ये क्या हो गया, ये भी क्या है ना? आश्चर्य खाना, अरे जो होना था वही हुआ ना, हाय क्या हो गया, ये क्या, हाय ये कैसा क्यों हुआ, ये प्रश्न करना। लेकिन जब बाबा कहते साक्षी और दृष्टा, ये निश्चय बुद्धि की निशानी है। साक्षी दृष्टा ये निश्चिंत स्थिति की निशानी है। साक्षी दृष्टा ये बेफिक्र बादशाह की निशानी है। इसलिए न प्रश्न है, न कोई आश्चर्य खाते हैं, न ही डर लगता है, न ही चिंता करते हैं और न ही कोई दुख होता है। कोई दुख की बात ही नहीं है। दुख के आंसू आने चाहिए, किसको आते हैं, मैंने कभी कभी आते हैं, इसको कभी कभी आता है, आता था देखो, कभी नहीं आना, भाइयों को भी आता है, भाई भी हाथ उठा रहे हैं, दुख के आंसू आते हैं, दुख के आंसू तो कभी नहीं आने चाहिए, कुछ भी हो जाए। जब बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, ना पता नहीं अम्मा और बीबी के लिए क्यों कहा, किसके लिए भी हो ना, खाली अम्मा और बीबी क्यों, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज्यादा प्यारी होगी ना अम्मा और बीबी, लेकिन कोई भी हो, पर दुख के आंसू कभी नहीं होने आने चाहिए। क्योंकि पतियों का पति मिला, पिताओं का पिता मिला, सब कुछ मिला, कुछ और चाहिए नहीं। हमने तो देखा है कि अगर किसी का कोई बहुत नजदीकी संबंधी मरता है ना, उसके मरने का दुख नहीं होता इतना, सच पूछो तो, हाय अभी मेरा क्या होगा, तो वो बेचारा क्या हुआ उसका कुछ नहीं, मेरा क्या होगा, माना दुख किस बात का है, उसका दुख नहीं है, लेकिन मेरा क्या होगा, माना स्वार्थ है, अपना स्वार्थ है, क्योंकि वही मेरा सपोर्ट था, सहारा था, वही मेरे आजीविका का आधार था, अब मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा ये भी स्वार्थ है। अरे क्या होगा, बाबा तो है ना, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, उस आत्मा का इतना ही पार्ट था, वो जहां भी जाएगा अपना हिसाब किताब वहां ही फिर उनका बनेगा, निकलेगा, मेरे साथ इतना ही था। इसको साक्षी दृष्टा होके देखना, यानी उसमें भी हम, ये नहीं कि हम कोई हंसेंगे या कोई जोर जोर से कोई उस समय जोक करेंगे, वो बात नहीं है, सीरियस भी रहेंगे, क्योंकि घटना तो बहुत बड़ी घटी है ना, क्यों नहीं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, इसलिए वो आत्मा जहां भी गई वो सेवा ही करेगी, वही जो उनका पार्ट था वो वहां आगे चलेगा दूसरे रूप से, मेरे साथ इतना ही हिसाब किताब था। और बिल्कुल बेफिक्र बादशाह का मतलब कि इन सब जो नेगेटिव बातें बताई इनसे मुक्त। इसलिए बाबा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान देकर के कितना ऊंचा उठा लिया है, सचमुच बाबा को थैंक्स देते हैं इसके लिए। थैंक्स देते हो? सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहला काम क्या करना है? थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा। दुनिया में भी ये सिखाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, पहले आप उठो तो नई शुरुआत के लिए, नए सवेरे के लिए ईश्वर को धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। तो वो तो है ही, लेकिन बाबा ने हमें कितना बेफिक्र बादशाह बना दिया है। रात को सो, बाबा की गोद में सो जाओ। बाबा कहते जो कुछ है सारा हिसाब किताब मेरे को दे के सो जाओ, खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली हो जाओ, एक सेकंड में नींद आ जाएगी। कई कहते हैं ना नींद नहीं आती, नींद नहीं आती क्योंकि चिंताएं हैं। कई बार लगता है चिंता नहीं है तो भी नींद नहीं आती है, तो फिर कुछ और कारण होगा, वो देखना पड़ेगा, फिजिकल रीजन है। पर कोई ऐसे चिंताएं हैं इसलिए नींद नहीं आती है, वो तो कारण बनना ही नहीं चाहिए न नींद आने का। हमारी दादी प्रकाशमणि जी ने, जिसे किसी ने प्रश्न किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो दादी जी बता रही थी कि हमारे कितने सेंटर्स हैं, तो किसने प्रश्न किया कि आप ये कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इतने सारे सेवा केंद्र। तो दादी जी बता रही थी कि पहले ऐसे हमारे जोन्स है, फिर हमारे सब जोन्स है, फिर सब जोन के अंदर सेंटर्स है, उनके सेंटर्स के इंचार्ज हैं, फिर सब सेंटर्स है, फिर गीता पाठशालाएं हैं, फिर क्लासेस हैं। मतलब ये दादी जी बता रहे थे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ऐसे चलता है। और फिर लास्ट में वो हर एक अपना अपना कोई प्रॉब्लम्स होती है वो खुद ही सुलझाते हैं, पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर हेडक्वार्टर में आता है, नहीं तो सब अपने लेवल पर वो जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो कहा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत महिमा करने लगे। परंतु कुछ बड़े बड़े भी तो कारण ऐसे होते होंगे, फिर पूछा किसी ने, तो कहा होते हैं, लेकिन फिर हमको विश्वास है, हमारा बहुत अच्छा संगठन। दादी ने बहुत सुंदर रूप से बताया, हमारा इतना अच्छा संगठन है, हम सब मिल करके करते हैं, और फिर हम सबके ऊपर परमात्मा है। अगर कोई बात नहीं सुलझती आपस में भी, ओपिनियन नहीं है मना, तो फिर हम बाबा से पूछते हैं, और बाबा जैसे कहे, क्योंकि बाबा भी ऐसे ही सीधा नहीं कहता है। बाबा कहेगा पहले मीटिंग करो, आपस में राय करो, फिर आपस में जो आपकी राय हुई वो बाबा को बताओ, फिर बाबा फाइनल देंगे। तो फिर किसी ने दादी से पूछा, बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर दादी से पूछा आपको रात को नींद आती है? तो दादी मुस्कुराई, क्यों नहीं नींद आएगी, बस मैं जाती हूँ रात को बिस्तर पर, बाबा मैं आ गई आपके पास, गोद में चली गई, छोटा बच्चा बन जाती हूँ। और सचमुच हम देखते थे दादी को, दादी कहती थी मुरली सुनाओ, तो कोई ना कोई मुरली पढ़ के दादी को सुनाता था, बस मुरली सुनते सुनते कब दादी को नींद आ गई पता भी नहीं चला, बाबा की गोद में सो गई। यानी कोई सोचे जिसके माथे इतना मामला उसको नींद कैसे आई, कई बार बाबा मुरली में कहते हैं जिसके माथे इतना मामला उसको नींद कैसे आए। लेकिन दादी कहती थी मैं थोड़ी करती हूँ, तो जब वो अखबार वालों ने उनसे पूछा तो फिर भी दादी आप ये सब कैसे करते हैं, तो दादी जी का मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। सब ये और भी बैठे थे, सब सीनियर्स बैठे थे, ये लोग ये सब करते, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। ये है लीडरशिप की क्वालिटीज। लीडर वो जो सब कुछ करते हुए भी जैसे निश्चिंत है, क्योंकि उसने सब अलॉट कर दिया है, मैं करूं मैं करूं मैं जो फंसा रहेगा ना वो कभी भी बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकता है। पर ये भी नहीं है कि ये करो फिर ये कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है पता ही नहीं, नहीं फिर उसकी पीठ भी करनी होती है। पर पीठ का मतलब ये नहीं है कि चिंता कर रहे हैं, कुछ मदद चाहिए मदद भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, पर फिर भी बाबा को आगे रखते हैं। ये बहुत ऊंची लीडरशिप क्वालिटीज दादी जी की थी। दादी जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, बहुत दादी के बहुत नजदीक थे, बाबा मम्मा के भी थे, लेकिन दादी जी के साथ मधुबन में रहना हुआ। दादी जी बॉम्बे में रहते थे तो हम दादी जी हमारी टीचर थी तो हम दादी को देखते थे कैसे कितना सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो बहुत कुछ भी बात होती सबसे राय लेगी, ऐसे नहीं अपना अधिकार जमाएगी, सबसे राय लेगी, सबसे राय लेकर के उनको अपने जैसे कॉन्फिडेंस में लेना और उसके बाद फिर फाइनल डिसीशन देना, ये नहीं ऑर्डर नहीं। तो सचमुच तो दादी से एक बार किसी ने पूछा कि आप सचमुच ये कैसे चला रहे हो, तो दादी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि सबके प्रति मेरा विश्वास है, सबके प्रति मेरा विश्वास है, ये विश्वास इस संस्था को आगे बढ़ा रहा है। अगर मान लीजिए एक विश्वास न होता तो हा? ये ठीक नहीं, चलो निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, वो सब अकेला हो जाएगा वो व्यक्ति। विश्वास में लेना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। चलो एक ने धोखा दिया कोई बात नहीं, परंतु सब तो नहीं देंगे, और विश्वास ही नहीं रखा तो सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये दादी जी की विशेषता थी, सब में विश्वास है। एक कहावत है, इंग्लिश में कहावत है, टू ट्रस्ट एंड फेल इज बेटर देन टू नॉट ट्रस्ट एंड सक्सीड। विश्वास न रख करके अपने आप पर बस सब कुछ मुझे ही करना है और सफलता पाना, उनसे अच्छा है विश्वास रख करके भले असफलता पाना। आप मानेंगे इसको? हाँ? क्यों? हाँ? साथ में रहेंगे क्योंकि विश्वास पात्र आपके बने रहेंगे क्योंकि आपने विश्वास रखा, नहीं तो अकेले पड़ जाएंगे क्योंकि कोई आप में भी विश्वास नहीं रखेगा। आप नहीं रखेंगे तो आप में क्यों रखेगा कोई, क्योंकि आपने तो रखा ही नहीं। इसलिए सबको साथ लेकर के चलना है, एक बहुत बड़ी खूबी है। और जिसने सबको साथ लेकर चलना सीखा ना, वो बेफिक्र बादशाह बन सकता है, बन सकता है। पर साथ लेकर नहीं चलना सीखा तो चिंताओं से ग्रसित हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बेफिक्र बादशाह कैसे बने, सबसे पहले मम्मा को साथ लिया, मम्मा को आगे बढ़ाया। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, अपनी सारी प्रॉपर्टी, अचल चल अचल प्रॉपर्टी जो कुछ है बहनों को सौंप दो, बिल्कुल श्रीमत का पल पल पर हर कदम कदम पर पालन किया जो शिव बाबा ने उनको श्रीमत दी, और बिल्कुल माताओं बहनों के आगे दे दिया, सपोर्ट कर दिया। और बाबा ने मम्मा को दिया और जो भी उनके साथ थी, और बाबा खुद कश्मीर चले गए और मम्मा को देकर गए कि अभी आप इस संस्था को, सत्संग को और आगे बढ़ाओ। शुरू शुरू की बात है हैदराबाद सिंध में। तो मम्मा के ऊपर जैसे ही जिम्मेदारी आई और बाबा कश्मीर चले गए मम्मा को सौंप कर, क्योंकि बाबा खुद होते तो मम्मा इतना नहीं कर पाती ना, क्योंकि बाबा साथ है, बाबा करेंगे, और उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी। तो क्या हुआ, उसने तो, मम्मा ने तो जो सत्संग में थोड़े आते थे वो तो 10 गुना बढ़ गए, जब बाबा वापस आए तो 10 गुना बढ़ गया सत्संग। माना विश्वास हो गया है मम्मा पर कि ये मम्मा इस बात को आगे बढ़ाएगी। फिर दादी जी आए तो कैसे, दादी जी में पूरा विश्वास था, दीदी जी में, तो शिव बाबा ने कहा बहनों को आगे करो, बहनों को आगे करो। तो बहनों को आगे करने से क्या हुआ, उनको वो जो विश्वास बहनों का मिला उससे इतना बड़ा कार्य हो गया। बाबा की मैं बात कर रही हूँ, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आगे रखा, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के आज्ञाकारी बन करके ये सारा कार्य किया, और देखो आज ये बाबा का कार्य कैसे चल रहा है। लोग आश्चर्य खाते हैं सचमुच। जो बाबा ने मुरली में कहा ना, एक दिन आएगा जब आपका बहुत संख्या हो जाएगी तो लोग आएंगे पूछेंगे। अभी भी सन्यासी आए थे, इन सन्यासियों ने भी महसूस किया। उसने उन्होंने एक ने तो यहाँ तक कह दिया, क्योंकि ये बहनों द्वारा संस्था संचालित है इसीलिए आपकी इतनी आगे बढ़ रही है, और हम पुरुष लोग ने बहनों को आगे किया ही नहीं तो क्या हुआ, बेचारे वहीं के वहीं रह गए, है ना। कईयों ने तो पहले हरिद्वार के जो ऋषि जो थे इस महामंडलेश्वर, उन्होंने हमारी प्रेम बहन को ऑफर किया कि आप हमारा आश्रम आके संभालो, आप हमारा आश्रम आके संभालो, बहुत बड़ा आश्रम है, वो जमीन है और कुछ हम कर ही नहीं पा रहे, आप लोग कितना काम करते हो। तो प्रेम बहन ने बहुत सुंदर रूप से कहा, ये हम नहीं कर रहे, ये शिव बाबा कर रहा है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो निमित्त समझ करके चलेंगे तो बेफिक्र बादशाह होके रहेंगे। और बाबा कई बार कहते हैं ना, शिव बाबा को बोझ दे दो, शिव बाबा को यूज करो। पर अगर हम कहें कि नहीं मुझे ही करना है, मैं बाबा को क्यों परेशान करूं बाबा को परेशान क्यों करूं मेरा बोझ उनको देके। बाबा कहते देखे तो देखो, खुद कोई करना है तो करो, मुझे देखे तो देखो। हम तो कई बार मिसाल देते, हालांकि इतना अच्छा मिसाल नहीं है लेकिन है जरूर, हम ट्रेन से उतरते ना तो सामान बहुत होता है, तो कूली आता है, कूली को लेना होता है, अभी कूली रखेगा एक सूटकेस, दूसरी सूटकेस, तीसरी सूटकेस, अब हम सोचेंगे इतना कितना देंगे हम उसको, चलो मैं ये थैला लेती हूँ, वो कहेगा नहीं लाओ 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 लाओ, हम कहेंगे नहीं 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 भाई आप कितना आप लोगे, हम लेते, हम हाँपते रहेंगे, कहते लाओ लाओ लाओ, क्योंकि उसको बैलेंस रखना है ना, तो भले कितना भी हो यहाँ भी बैलेंस रखना है, यहाँ भी बैलेंस रखना है, तो यहाँ भी उठाएगा, यहाँ भी उठाएगा, ऊपर भी उठाएगा, दौड़ेगा, और हम एक थैला लेकर हाँपते रहते, सोचते इतना कितना कैसे देंगे। लेकिन वो तो अनुभवी है, उसको तो वो सारा दिन उसका यही काम है, तो उसकी तो हड्डियां मजबूत है, और हम सोचेंगे इसको मेहनत दे रहे हैं, अरे भाई इतना दिया वो नहीं, वो तो दे ही रहे हैं पर और कैसे दूं, इतना कितना उठाएगा, रोके गए लाओ लाओ लाओ, कहता है ना आप लोग देखते हो कि डरते हो, नहीं बेचारे कितना उठाएगा, ऐसे कहते हो हाँ जी, हाँ हम भी कुछ ले वे, इनको इतना बोझ क्यों दे। अब बाबा कहते हैं देखे तो देखो और सचमुच कैसे बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा को अपने दे दिया, बाबा कैसे बुद्धि को टच करके ठिकरा देता है। हम समझते मैं इसको क्या करूं, कैसे करूं, कैसे इसको समझाऊं, ये करूं, मनसा सेवा तो हम करना जानते ही नहीं, समझो मनसा सेवा अगर हम करें ना बहुत सेवा हो सकती है, और मनसा सेवा में ही बाबा को बोझ दे रहे हैं, बाबा ये आपको करना, आप उस आत्मा की मनसा सेवा कर रहे हो, आप हल्के होके चलो, आप हल्के होके चलो, बाबा को दो और मनसा सेवा करो, उस आत्मा की बोझ बाबा को दे दो, देखो वो कार्य कैसे आपका इतना सुंदर रूप से हो जाएगा और आप निर्विघ्न बन सकेंगे बिना कोई चिंता किए। और खुद कोई मुझे ही करना है, यही मुझे ही करना है, तो करो बाबा के कि छोड़ो करना है करो। तो इसको बाबा कहते हैं बाबा को यूज करो। कैसे यूज करेंगे बाबा को, कैसे यूज करेंगे, कोई बात है ना, कैसे होगा बाबा, बाबा आपको ही ठीक करना है, कहो बाबा को, कहो यूज करो, और खुद निश्चिंत होकर के बाबा की याद में रहो, और जो विघ्न डाल रहा है उस आत्मा को उनकी मनसा सेवा करो, क्योंकि वाचा कर्मणा से कुछ नहीं होने वाला है, मनसा से बहुत कुछ परिवर्तन हो सकेगा उसका, और उसकी मनसा बदल जाएगी, उसकी बुद्धि को बाबा टच करेगा, आप उनके मन को टच करो, वो बुद्धि को टच करेगा बाबा, वो भी कुछ बाबा थोड़ी कुछ करेगा, कुछ चमत्कार थोड़ी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसकी बुद्धि को टच होगा और आप उसकी मनसा सेवा के तो शक्ति आएगी, वो अपने आप बदल जाएगा, अपने आप सूली से कांटा हो जाएगा, नहीं तो चिंता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जरूरत ही नहीं है। इसको कहा जाता है बेफिक्र बादशाह। अभी बन गए ना सभी बेफिक्र बादशाह, कि अभी भी कोई चिंता का टोकरा उठा के घूम रहे हैं, नहीं ना, सब हैं जो समझते हैं हो गए बेफिक्र बादशाह, हाथ उठाओ। अच्छा तो सारा दिन ऐसे ही रहना, घर की चिंता तो नहीं है, बच्चों की चिंता तो नहीं है, दुकान की दफ्तर की कोई चिंता नहीं, थोड़ी 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 यहाँ आए हैं, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं उसने वो काम किया कि नहीं किया, पता नहीं वो उसको ये कहा था जाने को गया कि नहीं गया, पता नहीं तो नहीं आएगा मन में, क्या कहेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा। ये है बहुत सुंदर विधि बेफिक्र बादशाह बनने की। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है,
शांति। दीदी जी को बहुत बहुत दिल की दुआएं, धन्यवाद, थैंक यू दीदी।